ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। कृषि मंत्री गीता चौधरी का कथन और बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर सख्ती करेगा यूरोपीय संघ। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की दूसरी बैठक ने राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित होकर संदेश सहित प्राप्त 4 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्री निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083 तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2083 को स्वीकृत किया। नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने संबंधी विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री सोविता गौतम द्वारा प्रस्तुत विचार किया जाए प्रस्ताव को सदन के बहुमत से स्वीकृति मिलने की घोषणा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने की। इससे पहले विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री गौतम ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। मंत्री गौतम ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने तथा अनुसंधान प्रणाली को निष्पक्ष स्वतंत्र और अधिक सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाना उपयुक्त होगा। सभामुख अर्याल ने जानकारी दी कि नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने संबंधी विधेयक 2083 पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद प्रतिनिधि सभा की विधेयक शाखा में अपने संशोधन दर्ज करा सकते हैं। इसी बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून मंत्री सोविता गौतम ने राष्ट्रीय सेवा दल विधेयक 2083 सदन में प्रस्तुत किया। मंत्री गौतम ने कहा कि यह विधेयक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में देशभक्ति जनसेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले सभामुख कार्यालय ने बताया कि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति संबंधित प्रस्ताव पर किसी भी सदस्य की ओर से विरोध की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से मंत्री गौतम ने महान्यायाधिवक्ता की वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की 25वीं वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत की। इसी बीच प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सीमा संबंधी रिपोर्ट टिप्पणी को वापस लेने की मांग करते हुए एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद सभामुख अर्याल ने उनसे विरोध का तरीका बदलने का आग्रह करते हुए कहा कि वे लंबे समय से एक ही विषय पर ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक सदस्य अपनी बात रखें और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने दी जाए। विपक्षी दल के सांसद 17 जेठ को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा संसद में दिए गए सीमा संबंधी वक्तव्य को संशोधित करने की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत में सांसदों ने देश के समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि सरकार प्रशासनिक सुधार के प्रयासों को और अधिक संस्थागत परिष्कृत तथा परिणाम उन्मुख बनाते हुए नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सुशासन का अनुभव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के 100 दिनों में किए गए प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और प्रारंभिक परिणामों की जानकारी देते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि इस अवधि में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यता आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा वितरण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सरकार के प्रवक्ता पोखरेल ने बताया कि संघीय मामलों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई है और इससे राज्य कोष में प्रतिवर्ष लगभग 20 अरब नेपाली रुपए की बचत होने का अनुमान भी है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्री निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयकों को पारित किया है। राष्ट्रीय सभा ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल आयन में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2083, आर्थिक विधेयक 2083 तथा राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया। इसी तरह प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 को आज की राष्ट्रीय सभा की बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय सभा की बैठक ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 को भी सर्वसम्मति से पारित किया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज निर्माण क्षेत्र के समस्याओं, इसके संवर्धन, भौतिक संरचना विकास, निवेश माहौल तथा आर्थिक सुधार से जुड़े विषय पर निर्माण व्यवसायियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि निर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सकारात्मक और प्रतिबद्ध है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने मंत्रालय और उसके अधीन स्थल निकायों को कानून के विपरीत संविदार करार सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रबंधन को विधि सम्मत, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यकता की स्पष्ट पहचान, उसके औचित्य की पुष्टि तथा सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि अतीत में विभिन्न निकायों द्वारा कानून के विपरीत बड़ी संख्या में करार कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के कारण अब संस्थानों के समग्र प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा है कि किसानों को समय पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। आज मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री चौधरी ने बताया कि मुख्य बुआई के मौसम में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण व्यवस्था, किसानों की शिकायतों तथा देश भर से प्राप्त सूचनाओं की प्रत्यक्ष निगरानी की जा रही है और समस्याओं के शीघ्र समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभामुख डोल प्रसाद अरियाल से नेपाल के लिए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की। आज सिंहदरबार में हुई मुलाकात के दौरान सभामुख अरियाल ने कहा कि उच्च स्तरीय दौरों के आदान प्रदान से नेपाल और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन, रेल तथा बस सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी के विस्तार से दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने भविष्य में अधिक उड़ानों तथा रेल और बस मार्गों के विस्तार की आशा भी व्यक्त की। भेंट के दौरान राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ बच्चों को किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच को और अधिक सुरक्षित तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में नए नियम तैयार कर रहा है। प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य नाबालिगों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, साइबर बुलिंग, लत पैदा करने वाले प्लेटफॉर्म डिजाइन और गोपनीयता संबंधी जोखिमों से बचाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संकेत दिया है कि ईयू आने वाले महीनों में नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर अधिक कड़े नियमों का प्रस्ताव ला सकता है। कई सदस्य देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर समान नियम लागू करने के पक्ष में हैं ताकि पूरे यूरोप में एक रूप नीति बनाई जा सके। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 सहित 6 विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निर्माण व्यवसायी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं, कृषि मंत्री गीता चौधरी का कथन, और बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर सख्ती करेगा ईयू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
Thank you.